समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो नेहा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नेहा गोस्वामी, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज एट डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 184 multi-story flats for MPs in New Delhi, says they symbolize spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat.
BJP ne jhoot phailane aur chunavi prakriya ke khilaf niradhar aarop lagane ke liye Congress ki aalochna ki.
Australia to recognize Palestine state at UNGA in September, says Prime Minister Anthony Albanese.
और मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया।
एंड नाउ लिसनर्स, इट्स टाइम फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन इंडिया इन व्हिच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और द ग्लोबल लेवल, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट हर घर तिरंगा। Well, today's broadcast is not just a program, it's a tribute to our flag, our freedom, and the unbreakable spirit of our people. As we stand tall in the proud 78th year of India's independence, let's take a moment to remember a campaign that reignited the spirit of patriotism in every corner of the nation, Har Ghar Tiranga, a campaign that transformed from an idea into a nationwide celebration, a movement that reminded us that the Tiranga is not just a piece of cloth, it's a living symbol of identity, our pride and our unity.
वर्ष 2022 में जब भारत आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा था, तब स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की, हर घर तिरंगा। संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान एक सरकारी अभियान के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द यह उससे कहीं बढ़कर साबित हुआ, यह एक जन आंदोलन बना।
Yes, and from the snowy heights of Leh to the lush backwaters of Kerala, from metro cities like Mumbai and Delhi to the quiet lanes of rural India, from school children to working professionals, farmers to artists, soldiers to homemakers, every Indian responded. Every rooftop wore the tricolour, every street shimmered with saffron, white and green, every heart beat with pride.
भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से
सोशल मीडिया पर पहले से कई ज्यादा रौनक छा गई। हैशटैग हर घर तिरंगा ट्रेंड करने लगा, क्योंकि परिवारों के सदस्यों, दोस्तों, पड़ोसियों और यहां तक कि अजनबियों ने भी राष्ट्रीय ध्वज के साथ तस्वीरें, वीडियो और दिल को छू लेने वाले पल साझा किए। सेल्फी विद तिरंगा सिर्फ एक ट्रेंड नहीं था, यह विविधता में एकता का उत्सव बन गया।
Indian Railways illuminated stations across the country in tricolor lights. Airports welcomed passengers under massive flags. Government buildings proudly displayed the flag. The armed forces saluted it. E-commerce platforms carried it on the websites and delivery vans.
जी, इससे भी ज्यादा प्रेरणादायक थी इस आंदोलन के पीछे छिपी खामोश ताकत। वे लोग जिन्होंने इसे संभव बनाया। हजारों स्वयं सहायता समूहों ने, जिनमें से कई का नेतृत्व महिलाओं ने किया, झंडे बनाने और उनकी आपूर्ति करने के लिए अथक परिश्रम किया। इन महिलाओं ने सिर्फ कपड़ा नहीं सिला, उन्होंने राष्ट्रीय गौरव सिला, आशा सिला, उन्होंने एकता सिला।
Yes, and Neha, and the impact was beyond what anyone could have imagined. Over 200 million homes across India hoisted the national flag. But more than the number, it was the emotion, the pride, the unity that made Har Ghar Tiranga a moment in history, because it reminded us of what the Tiranga truly stands for. Saffron for courage and sacrifice, white for peace and truth, green for growth and prosperity. And in the middle, the Ashoka Chakra, spinning forward, reminding us to keep moving, keep striving, keep building a better India.
मैं तेरा परिंदा है अर्जी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल
लद्दाख में देशभक्ति की भावना जगाने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत जांस्कर पर्यटन कार्यालय ने मनोरम जांगला पर्यटक शिविर स्थल पर तिरंगा मार्च का आयोजन किया। स्थानीय पर्यटन हितधारकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस पहल ने नागरिकों को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घरों और मठों पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया।
Yes, and the Patriotic Film Festival has also been organized by the Ministry of Information and Broadcasting and the National Film Development Corporation in New Delhi today. This film festival has been celebrated as a run-up to Independence Day under the Har Ghar Tiranga campaign from 11th to 13th of August at the City Fort Auditorium. And the three-day festival aims to pay tribute to the spirit of the nation. And speaking on the occasion, Delhi Minister for Art, Culture and Language, Kapil Mishra, highlighted that the Har Ghar Tiranga campaign will bring every home under one flag, filling hearts with pride. He asserted that the campaign will unite India's spirit and deepen the bond among its people.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा में भाग लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्री ने सभी से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया।
So this Independence Day, as you reach for the flag, remember, is not just a symbol, it's a story of every freedom fighter who dreamed of a free India, a story of every soldier who guards our borders, a story of every citizen who builds this nation one day at a time.
जी, आइए तिरंगा सिर्फ अपनी छतों पर ही नहीं बल्कि अपने दिलों में भी फहराएं, अपने कार्यों में, अपने रोजमर्रा के जीवन में। आइए हर घर तिरंगा की भावना को आगे बढ़ाएं, दुनिया को याद दिलाएं कि हमारी एकता ही हमारी ताकत है।
Let us salute the Tiranga not just with the hands but with the hearts, because it's not just a flag. It's every sacrifice made for our freedom. It's every dream we hold for the future. It's every heartbeat of this great nation. So let the Tiranga fly high today and every day. Jai Hind.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
In a landmark move aimed at boosting Nagaland's agricultural profile, Wokha district is gearing up to host its first ever banana festival this October. And the festival has been organized under the One District, One Product initiative in alliance with the district's banana vision document. As preparations gain momentum, a coordination meeting was recently held under the chairmanship of Wokha Deputy Commissioner Vineet Kumar, bringing together officials from the agriculture and allied departments. The preparatory meeting focused on logistical planning, work distribution and execution strategies, and our correspondent has a report.
With approximately 863 hectares currently under banana cultivation, Wakha District produces both commercial and local varieties year-round across all its three regions, Upper, Middle, and Lower Wakha. The festival will not only celebrate banana farming, but will also serve as a strategic platform to promote local farmers, enhance productivity, and boost sustainable income generation. The Banana Festival is expected to spotlight Wakha's agricultural potential, celebrate its farmers, and create new opportunities through value addition, market linkages, and cultural promotion. Mary, Akashwani News, Kohima.
Sikkim celebrates first Ama Samman Divas. We have a report.
On August 10 at Rampur Ground, Chief Minister Prem Singh Tamang Gule, accompanied by his mother and spouse, inaugurated Ama Samman Divas to be observed annually to honor mother's social, cultural and economic role. Organized by the Human, Child, Senior Citizen and Divyangjan Welfare Department, the event included financial assistance under the Sikkim Ama Sashaktikaran Yojana, ₹40,000 to 32,000 mothers, LPG refill support under the Ama Sahyog Yojana and felicitation of 210 mothers. The Chief Minister launched Nari Adalat, a human-led community forum for accessible, informal justice on issues like family disputes, domestic violence, property matters, and human rights. Additional facilities like breastfeeding pods, maternity benefit, and the Ama Subidha Ghar were announced. Awards honor top-performing mothers and a short film was screened, reinforcing the day's theme of respect, empowerment and self-reliance for mother across Sikkim. Dilir Abdulal, Akashwani News, Gangtok for Parikrama.
Uttarakhand, Devbhumi, जहां संस्कृति की जड़ें गहरी हैं और परंपराओं की गूंज आज भी सुनाई देती है. 10 अगस्त 2025 देहरादून से एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ करते हुए एक नई संस्कृति क्रांति की नींव रखी. क्या है संस्कृत ग्राम और कैसे इन गांवों से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, आइए सुनते हैं हमारी संवाददाता साक्षी सिंह से.
उत्तराखंड, जहां परंपरा, संस्कृति और भाषा केवल अतीत की बातें नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है, अब एक नई पहल के साथ इस पावन धरती पर संस्कृत भाषा को फिर से समाज के केंद्र में लाने की शुरुआत हो चुकी है. 10 अगस्त को देहरादून के भोगपुर गांव में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का विधिवत शुभारंभ किया. इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य है संस्कृत को केवल एक शास्त्रीय भाषा के रूप में नहीं बल्कि दैनिक जीवन की संवाद भाषा के रूप में पुनः स्थापित करना. इन संस्कृत ग्रामों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्कृत भवनों का निर्माण किया जाएगा. साथ ही प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों की स्थापना कर बच्चों को शुरुआत से ही संस्कृत से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री का कहना है कि यह पहल केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इन गांवों में लोग अपनी दैनिक व्यवहार, संवाद और जीवन शैली में संस्कृत का प्रयोग करेंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार संस्कृत को लोकप्रिय और व्यवहारिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उत्तराखंड सदियों से देववाणी संस्कृत का केंद्र रहा है और ये पहल उस परंपरा को आधुनिक समय से जोड़ने का एक ठोस प्रयास है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है. अब इस भाषा को तकनीकी और डिजिटल संस्थानों से भी जोड़ा जा रहा है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, संस्कृत ऐप और ई लर्निंग के जरिए यह ज्ञान अब घर घर तक पहुँच रहा है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह.
The pen is mightier than the sword, and in the case of the Swachh Bharat mission, it could also be mightier than plastic. Reducing waste, especially plastic waste, is vital to building a clean and healthy nation. And in Kerala, a school in Thiruvananthapuram has taken an innovative step in this direction by encouraging students to use ink pens, aiming to cut down on plastic waste. We have more from M. Smithy from Akashwani News, Thiruvananthapuram.
In Thiruvananthapuram, Thaikkad Model Boys High School is writing new stories in the fight against single-use plastic with the help of ink pen. The school has launched an unique project called Green Champs Ink Shift, encouraging students to shift from single-use ballpoint pens to fountain pens. As part of the initiative, fountain pens and ink bottles have been distributed to students from classes 5 to 9, and an ink dispenser has been installed in the campus for easy refills. Until now, most students use disposable plastic refill pens, generating a large amount of plastic waste every day. But
With this move, the school aims to cut that waste, nurture an eco-friendly campus culture, and raise awareness on waste segregation at the source. It's a small change, but one that could help the school to write a big success story in ink and not plastic. M. Smithy, Akashvani News, Tiruvananthapuram.
Scientists have uncovered stone tools on Indonesia's Sulawesi Island dating back 1.48 million years, marking the earliest evidence of human presence in the Wallacea region, discovered by archaeologists from Indonesia and Australia in South Sulawesi's Sopeng area. The tools were likely used for cutting small animals and carving rocks. Radioactive dating of the tools and nearby animal teeth confirmed the age. Previously, the oldest known human activity in Wallacea was from 1.02 million years ago on Flores and Luzon Islands, and these findings challenge the belief that early humans like Homo erectus couldn't travel long distances by sea, suggesting they reached Sulawesi much earlier, and this discovery reshapes our understanding of early human migration across island Southeast Asia.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
इन बॉक्सिंग यंग इंडियन वीमेन प्यूजलिस्ट्स निशा एंड मुस्कान शोकेस द इम्प्रेसिव स्किल्स फॉर विनिंग गोल्ड मेडल्स व्हाइल फाइव अदर्स बैक सिल्वर इन द अंडर 19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स इन बैंकॉक येस्टरडे. Out of the 10 female boxers in the fray, 9 will return with medals, including 2 gold, 5 silver and 2 bronze, showcasing India's strong performance against tough competitors from countries like China, Kazakhstan and Uzbekistan.
वहीं खेलों में एथलेटिक्स में ओलंपिक विजेता अनुरानी ने कल इंडियन ओपन 2025 विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता. उधर भारतीय महिला मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने कल बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता.
द 15th हॉकी इंडियन जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 इज सेट टू किक ऑफ टुमारो इन जलंधर पंजाब. द टूर्नामेंट विल रन अंटिल ऑगस्ट 23rd एंड विल फॉलो द न्यू डिवीजन बेस्ड फॉर्मेट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द सीनियर एंड सब जूनियर मेंस एंड वीमेंस एंड जूनियर वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप्स earlier this year. Now on to some business news. Benchmark domestic equity indices today ended truncated week's first trading session with gains of nearly 1%. Barring consumer durables, all sectoral indices displayed strength with Realty and PSU Bank leading the charge. Sensex surged 746 points to close at 80,604. Nifty also rose 222 points to settle at 24,585.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
We pay tribute to the legendary freedom fighter Khudiram Bose, who was executed by the British on the 11th of August 1908. He was only 18 years old when he was sentenced to death, making him one of the youngest martyrs of the Indian independence movement.
Khudiram Bose was born on the 3rd of December 1889 in Mohabani, Midnapur, West Bengal. In 1908, Bose was appointed to kill British magistrate Douglas Kingsford, who was unpopular for passing harsh and cruel sentences on young political activists.
On 20th April 1908, Bose and Prafulla Kumar Chaki threw a bomb at a carriage believed to be carrying Kingsford outside the European Club. But the carriage was occupied by the wife and daughter of barrister Pringle Kennedy, a leading pleader at the Muzaffarpur Bar.
News of the attack swept the entire town, and the Calcutta police were summoned to apprehend the duo. While Bose was apprehended at Waini train station, where he had arrived the next morning after walking 25 kilometers, Prafulla Kumar ended his life just before being arrested.
The entire community gathered around Bose when he was led handcuffed to the Muzaffarpur police station. After numerous trials and hearings, Khudiram was sentenced to death and executed on the 11th of August 1908.
Such was the spirit of Khudiram Bose that he was smiling while mounting the scaffold. Large crowds thronged the route through which his body was taken out in procession. People kept throwing flowers, silently acknowledging his sacrifice for the cause of freedom.
We also remember nationalist Ram Kalyan, who was martyred on the 11th of August 1947. A resident of erstwhile Bundi state, now in Rajasthan, Kalyan took part in the Bundi workers' struggle in August 1947. On the 5th of August 1947, the workers went on a hunger strike to get their demands redressed. The police arrested and detained a large number of workers and their leaders.
Undeterred, the workers continued their struggle with public support and organized a massive rally on the 11th of August 1947. When the rallyists marched with the national flags in their hands, the armed policemen opened fire on them, causing serious injuries to many. Ram Kalyan received severe bullet wounds on his chest and died the same day. We salute the brave son of the soil.
We remember independence activists Chandarma Prasad and Siambarm, resident of Prayagraj, Uttar Pradesh, who took part in the Quit India movement at their native place. While taking part in a Quit India rally on the 11th of August 1942, the two were killed in the police firing on the rallyists.
We also remember martyr Bisram Raut, who took part in the First War of Independence in Kolhapur, Maharashtra.
He was caught by the British and put on trial for desertion and mutiny. Bisram was sentenced to be transported for life with hard labor and irons and sent to the Andaman Islands, where he died in detention on the 11th of August, 1859.
Yes, and we are also remembering Andrew Carnegie, who passed on this day in 1919. He was a Scottish-American industrialist and philanthropist. Carnegie led the expansion of the American steel industry in the late 19th century and became one of the richest Americans in history. And also Edith Newbold Wharton passed away on this day in 1937. She was an American writer and designer. Wharton drew upon her insider's knowledge of the upper-class New York aristocracy to portray realistically the lives and morals of the Gilded Age. In 1921, she became the first woman to win the Pulitzer Prize for fiction for her novel, The Age of Innocence. She was inducted into the National Women's Hall of Fame in 1996. Her other well-known works are The House of Mirth, the novella Ethan Frome, and several notable ghost stories.
अपनी शायरी के जादू से लोगों के दिलों पर राज करने वाले राहत इंदौरी की आज पुण्यतिथि है। उनके नाम के आगे इंदौरी शब्द उनके शहर के नाम पर लगाया गया। उनकी शायरियों में वो तासीर है जो जिंदगी के हर पहलू से जुड़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बुलंद आवाज से उन्होंने एक अलग रुतबा पाया है। जब वह शायरियां पढ़ते थे तो बस हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई देती थी। उनकी कलम से न सिर्फ दर्द पर मरहम बनाने वाली शायरियां निकली, बल्कि उनकी कलम का जादू जिंदगी के हर पहलू पर चला। फिर चाहे वो दोस्ती हो, देशभक्ति हो या फिर रिश्ते और जिंदगी। राहत इंदौरी ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी होने वाले मुशायरों में भी अपना जलवा बिखेरा। आइए सुनते हैं राहत इंदौरी के मशहूर शेर।
उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा ये रही जान, ये गर्दन है ये सर, क्या लेगा सिर्फ एक शेर, उड़ा देगा परख के तेरे। तू समझता है कि शायर है, ये कर क्या लेगा।
रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है,
सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, कह रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे।
Yes, and Enid Mary Blyton was born on this day in 1897. She was an English children's writer. She is widely regarded as one of the most successful and prolific writers of all time, particularly in the realm of children's literature. Blyton's books have been worldwide bestsellers since the 1930s, selling more than 600 million copies and have been translated into 90 languages. As of June 2019, Blyton held the fourth place for the most translated author. She wrote on a wide range of topics, including education, natural history, fantasy, mystery, and biblical narratives. She is best remembered for her Noddy, Famous Five, Secret Seven, The Five Find-Outers, and Mallory Towers books, although she also wrote many others, including St. Clair's, The Naughtiest Girl, and the Faraway Tree series.
और आज जन्मदिन है मनबेंद्र मुखोपाध्याय की. मनबेंद्र मुखोपाध्याय बंगाली फिल्मों के भारतीय गायक और संगीतकार थे. 1950 के दशक की शुरुआत में अपनी विशिष्ट आवाज के साथ मनबेंद्र श्रोताओं के बीच तुरंत लोकप्रिय हो गए. उन्होंने एक संगीतकार के रूप में भी अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया. उनके गीत के बोल और धुन का बेहतरीन प्रभाव के साथ उन्होंने उपयोग किया. मनबेंद्र ने खुद कई बंगाली फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें माया मृगो, बधू, पासठ, जाटो मत तातो पत, जॉय जयंती, गोधुली बेले, सुदूर निहारिका, छिहत्तर आदि शामिल है. मनबेंद्र की शास्त्रीय क्षमता के कारण संगीतकारों ने बंगाली फिल्मों में अनिल बागची की सजनी बिना रे रजनी ना जय जैसे शुद्ध शास्त्रीय गीतों की रचना करने का साहस दिखाया. आइए सुनते हैं मनबेंद्र मुखोपाध्याय का ये गीत. Yes, and Christopher Hemsworth was born on this day in 1983. He's an Australian actor born and raised in Melbourne, Victoria and Bulman, Northern Territory. He rose to prominence playing Kim Hyde in the Australian television series Home and Away before beginning a film career in Hollywood. In the Marvel Cinematic Universe, Hemsworth starred as Thor in the 2011 film of the same name and reprised the role in several subsequent installments, which established him among the world's highest paid actors. और आज हम याद कर रहे हैं महान संगीताचार्य पंडित लालमणि मिश्र जी को, जिनका आज जन्मदिन है. वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे साधक थे जिन्होंने वीणा, सितार और तबला में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की. उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं ललित कला संकाय के प्रचार्य के रूप में अनेक विद्यार्थियों को संगीत साधना का मार्ग दिखाया. पंडित लालमणि मिश्र का योगदान भारतीय संगीत इतिहास में सदैव अमर रहेगा.
Yes, and Benjamin Gibbard was born on this day in 1976. He's an American singer, songwriter and guitarist. He's best known as the lead vocalist and guitarist of the indie rock band Death Cab for Cutie, with whom he has recorded 10 studio albums, and as a member of the indie pop supergroup The Postal Service. Gibbard released his debut solo album Former Lives in 2012 and a collaborative studio album One First Move or I'm Gone in 2009 with Jay Farrar. Let's listen in to his hit track, Train Song.
Nothing at all in my head to say to you, only the beat of the train I'm on. Nothing I've learned all my life on the way to you. One day our love was over and gone. It's so
Yes, and Viola Davis was born on this day in 1965. She's an American actress and film producer. She has won many accolades, including both the Triple Crown of Acting and EGOT. Davis received the Cecil B. DeMille Award in 2025. A graduate of Juilliard, Davis began her career in Central Falls, Rhode Island, appearing in small stage productions. And she made a Broadway debut in the August Wilson play Seven Guitars in 1996, for which she earned a first Tony nomination. And also, Neha, Stephen Gary Wozniak was born on this day in 1950, also known by his nickname Woz. He's an American technology entrepreneur, electrical engineer, computer programmer and inventor. And in 1976, he co-founded Apple Computer with his business partner, Steve Jobs.
जी, और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।